మనం భగవాన్ స్వరూప సాకారూపం మనం ప్రకటించాలి. ఇంకా స్వరూప్ కేసాయి ఆకాశ విషయం అంటే అభిమాన్ వరే ఒక మహాన్ ప్రకాశ నేత్రం బంద్ కరణ ఆకాశి ప్రత్యక్ష ప్రతీత పూర్ణిమా కా సమయ దేశ ఆకాశ దిగుతాయి మన ఉంటా ప్రకాశ సారే బ్రహ్మాండ మే సజా హా రహతా ఇసీ ప్రకాశ భగవాన్ చంద్రమా బడ్ కే మహాన్ ప్రకాశాలి హా ప్రకాశ ఎదుమ సారే బ్రహ్మాండ మే సజా హా హై ఆకాశ ఎదుమ ప్రత్యక్ష స్థిత హై నీల ఝలక సఫేద పదార్థ నీల రంగ కి ఝలక ప్రకార నీలా మహాన్ ప్రకాశ మహాన్ ప్రకాశ కా పుంజ నీలాపన కి ఝలక సఫేద స్వరూప తిరుమల కా స్వరూప సఫేద హై నీలాపన నీ హై నీలాపన ఐసా ప్రకాశ సఫేద గురు నీలా హా ఐసా భగవాన్ కా ఆకాశ స్థిత హీ సఫేద రూప రూప ఐసా భగవాన్ కా అలౌకిక స్వరూప ఆకాశ విరాజమాన తీన చార హాత్ దూరీ పర ఆకాశ స్థిత హ సాడే పాంచ ఫుట్ చౌరాయి సవా ఫుట్ ఇస్ ప్రకార భగవాన్ కా స్వరూప మనిషి జీతి లమాయి చౌరాయి కింద మనిషి జో పాంచ ఫుట్ జమీన కా ఉంకా స్వరూప దిబ్బ హై అలౌకిక పరమ దిబ్బ హై దిబ్బ తో ప్రేమా కాలి హై కింద వో తో ఏక మాయిక హై ప్రకాశ కా ఏక పుంజ హై శాస్త్రి కి దిబ్బత హై అయ్యే భగవాన్ కా స్వరూప తో గుణ సే అతీత హై గుణ సే కిణ్వ హై కిణ్వ హై ఏక ప్రకార సే తీ అప్నె ప్రభావ సే ప్రగట సు హై ఉన్కి చరణ బహుత హి కోమల హై శూన్య సే కలిగిన రోమాంచ హో జాతే హై ఔర్ ఇసి ప్రకార సే తీ అమృత యహాన్ సుశోభిత హో రహీ హై ఉన్కి వహాన్ ఉనికి జ్యోతి అలగ హై జే భగవాన్ చరణ ఐసే దోను పిండి దోను గోడే దన పితాంబర శరీర జిస్కే విచ్చే భగవాన్ కా శరీర ఎదుమ చమకతా హై దాగరి పరే నాగి జీవికి గయి హై కమ్మికి పుష్పతి మాఫక్ ఖిలి హుయి ఔర్ ఉదర్ పర్ తీన రేఖా జిస్కో త్రివేణి కహతే హై చార్ భగవాన్ కే భుజాయే నిత్య కి దో భుజాయే గదా ఔర్ పద్మ మే ఉపర్ కి దోనో భుజాయే శంఖ ఔర్ చక్ర హై చారు భుజాయే అంగూఠి పరే హుయే హై బాజూ మే బాంధే హుయే హై జిస్కో అనంత కహతే హై అనంత పరే హుయే హై ఔర్ గదే మే అనేక ప్రకార కి మాలా సో పై రఖీ హై కుచ్ ఊంచీ మాలా ఏక నాభి తక్ ఔర్ ఏక ఔర్ ఉస్సే మే నీచే సో మన మాలా పరే హుయే హై ఔర్ గదే కి మాలా పరే హుయే అజాన బాహు మన బాహు లమ్మి ऊपर से कुछ नीचे से पतली बहुत चिकनी और चमकीली और सुंदर और कोमल आज के छोड़ से आज पिस जाता है और आने की लाही उसे लगती है छूने के साथ छाती उनकी चोरी है इसलिए के स्थान के वहां लक्ष्मी जी को चिन्ह है ऊपर के स्थान में ध्रुव जी की रेखा को चिन्ह है बड़ा बड़ा सुंदर है कंस के मापक और थोड़ी सुशोभित हो रही है बहुत ही आपने शोभा हो रही है सुंदर है और जो है सो लाल मणि के मापक चमकते हैं अगर और दोनों आते हैं सब भगवान के मुखारविंद के दांतों की पंक्ति दिखती है, वो भी बड़ी चमकी, दांतों की पंक्ति बड़ी चमकीली है, दांत एकदम चमक रहे हैं, बिजली के माप उसके मां चमक है, और वाणी उनकी बहुत ही सुंदर मधुर है, कोमल है, अर्थयुक्त है, खाने के लिए अमृत के समान प्यारी है, उसमें जिद सुगंध आ रही है, तो नासिका के लिए अमृत के समान प्रिय है, नासिका बड़ी सुंदर है, दोनों कान जो है विशाल है, और कानों में मकराकृत रत्न जगत सूर्य के कुंडल है, सुंदर है, काल है, कालों के ऊपर कुंडलों की झलक पड़ती है, और शोभा बढ़ जाती है, नेत्र दोनों खिले हुए जैसे गुलाब के पुष्प खिले हुए हो, जैसे नील कमल के पुष्प खिले हुए हो, कमल के पत्ते की माप उनकी आकृति है, नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, भगवान के हृदय में गुण भरे हुए हैं, तो भगवान गुणों के सागर हैं, इन गुणों का विकास नेत्रों के द्वारा हो रहा है, मानो सारी संसार में फैल रहे हैं, भगवान सबको समभाव से देखते हैं, एक तक होकर के नेत्र सदा खुले रहते हैं, उनके द्वारा भगवान के गुण और प्रभाव का विकास होता रहता है, मानो हम लोग उनके ऊपर ही प्रेम की आनंद की वर्षा कर रहे हैं, आप प्रेम रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, हम लोगों के हृदय बड़ी प्रसन्नता और शांति प्रत्यक्ष हो रही है, भगवान के जो गुण है वो निराकार है, जैसे चंद्रमा की रश्मियों के द्वारा और अमृत से निराकार रूप से अमृत बरसता है, उसका अर्थ होता है, इसी प्रकार से भगवान के गुण सभी ऐसे निराकार है और सब पर उनकी एकदम वर्षा हो रही है, जिससे सब कोई मगन हो रहे हैं, प्रत्यक्ष में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद 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 सबके चारण करने के साथ मन बुद्धि इंद्रियों में सब जगह एकदम आनंद प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगता है, मन में बुद्धि में इंद्रियों में शरीर में रोम रोम में जगह जगह में सब जगह का आनंद ही आनंद प्रतीत होता है, मानो आनंद के सागर के मामले डूबे हुए हैं, जैसे चंद्रमा की रश्मियों में स्वाभाविक शांति रहती है, शीतलता रहती है, अमृत रहता है, ऐसे भगवान की दृष्टि के द्वारा आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है, हम लोग सब प्रेम मय हो रहे हैं, आनंदमय हो रहे हैं, ये असली अमृत है, ये अमृत है, और हम लोगों के शरीर में जो ज्ञान की दीप्ति है, ये परमात्मा से ही है, भगवान से ही है, भगवान एक ज्ञान मय है, ज्ञान घन है, तो नेत्र के द्वारा ज्ञान हम लोगों में काम कर रहा है, नेत्र के द्वारा उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सब पितर के वहाँ ज्ञान की दीप्ति हो रही है, हम लोगों ने जो चेतन का है या भी परमात्मा का है, क्योंकि भगवान चेतन स्वरूप है, इसलिए हम लोगों ने जागृत है, ऐसी परिस्थिति के बीच में आर पर विश्व तो आ ही नहीं सकता है, जहाँ चेतनता रहती है, जागृति रहती है, ज्ञान की बढ़ोतर रहती है, आर नहीं आ सकता, तो जहाँ वहाँ आनंद और शांति रहती है, वहाँ कोई विक्षेप असर नहीं हो सकता, तो भगवान शांति स्वरूप है, इस वास्ते उनके नेत्रों के द्वारा हम लोगों के मन परम शांति प्रवेश हो रही है, हमारे नीचे ऊपर बाहर जिस तक ज्ञान है शांति का साम्राज्य हो रहा है, शांति है वो आनंद है, आनंद वो शांति है, चिन्हय भगवान एक प्रकार से थी सम भाव से सब जगह के बीच के वहाँ विज्ञान धर्म रूप से एकदम प्रत्यक्ष के वहाँ की हो रही, भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, तपस है, वार्तालाप है, चिंतन है, ये सभी एक प्रकार से थी अमृतमय है, प्रेममय है, आनंदमय है, रसमय है, भगवान का दर्शन भाषण तपस बहुत मधुर है, भगवान का स्वरूप रसमय है, इसीलिए भगवान के स्वरूप को माधुरी मूर्ति कहते हैं, नेत्रों के द्वारा सभी गुणों की वर्षा हो रही है, उस गुणों तक के हम लोग परिपूर्ण हैं, भगवान अपने नेत्रों के द्वारा क्षमा दया शांति समता संतोष सरलता की वर्षा स्वभाव कर रहे हैं, गुणित मनो की गुणित का समुद्र दे गया हो और गुणों के साधन में हम लोग सब मनोमगन हो रहे हैं। ज्ञान जो है, भैया जो है, प्रेम जो है, वो एक तो प्रत्यक्ष महत्व से है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। संसार से स्वाभाविक ही बैराग उपरती हो रही है। भगवान के स्वर कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, और कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होता। केवल भगवान का ज्ञान है, तो भगवान के गुण का ज्ञान है, तो भगवान अपना प्रभाव डाल देंगे। भगवान बड़े प्रभावशाली है। भगवान का मुख जगह है, दो नेत्र खिले हुए हैं और उनमें बड़ी भारी आक्षण शक्ति है। मैंने अपनी तरफ खींच रहे हैं, जादू का सा काम कर रहे हैं। भगवान का ललाट एकदम चमक रहा है। भगवान की कुंती बड़ी सुंदर है, ललाट के ऊपर से धारी तिलक है, मस्त के ऊपर काले रंग के केस हैं, जो बुले हुए केस, और मस्त के ऊपर जो भगवान ने मुख बांध रखा है, रतन जलित सुरंग का मुकुट है। भगवान के मुखारविंद के चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, और प्रकाश की किरणें जो है रश्मियां बहुत ही सुंदर सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। भगवान का जो रूप है वो बहुत ही शांतिमय है, मन मन उसमें शीतलता है, और ज्ञान के आप अपुंज हैं। ऐसा जो भगवान का रूप मन उसका हम ध्यान करते हैं, भगवान के ध्यान से, भगवान के जो गुण है, भगवान के नेत्रों से नेत्र कर देते हैं। भगवान जो हम लोगों को देख रहे हैं, तो हम लोगों में उसका प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों के नेत्रों के द्वारा सारे गुण हमारे हृदय में जा रहे हैं, तो जाकर के अवगुणों का तो नाश हो ही गया, और गुणों की बहुत है, गुणों का साधन मानो उड़ गया हो। इससे शरीर के भीतर में बारम्बार प्रसन्नता, शांति, आनंद, प्रमोद हो रहा है, विभिन्नता हो रही है। चरणों को लेकर मस्तक तक भगवान एक जैसे आनंद की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। इसी प्रकार से थी उनका प्रभाव हम लोगों पर पड़ने से थी, हम लोग भी उस प्रेम, ज्ञान और आनंद के सागर के मध्य में हैं। हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद ज्ञान परिपूर्ण हो रहा है। शांति जो आनंद के रूप में दिखती है, यह शांति और आनंद एक चीज है। ध्यान करते करते भगवान के में खूब प्रेम बढ़ जाता है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय के बीच के मां उसकी अवस्था, उसका जीवन एकदम बदल जाता है। भगवान का जब दर्शन होता है, तो दर्शन के समय में कुछ भक्ति नेत्र एकदम खुद ही रह जाते हैं, एकटक रह जाते हैं, तर्क भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो देखता रहता है। मानव नेत्रों के द्वारा एकदम प्रत्यक्ष एक अनुभव अनुभव कर रहा है। भगवान प्रेमास्पद है और भक्त प्रेमी है, और प्रेम का संबंध है, तो प्रेम प्रेमास्पद और प्रेमी की एक ही वस्तु हो जाती है। धातु चिन्ह की एक ही है, आकृति अलग है। प्रेम का तो कोई आकृति नहीं है, वो तो एक भाव रूप है, और भक्त और भगवान की जो आकृति है, वो समझो की चिन्ह आकृति हो जाती है, शुद्ध आकृति हो जाती है। दोनों की क्रिया एक दूसरे को अलग करने के लिए होती है। उत्तरोत्तर प्रेम और आनंद की बहुलता प्रतीत होती रहती है। कुछ भक्त को फिर अपने आप का ज्ञान नहीं रहता, भगवान का ज्ञान रहता है। कुछ समय के बीच के वहां बड़ी भारी प्रसन्नता और शांति इतनी होती है कि वो शांति स्वरूप बन जाता है, अनंत स्वरूप बन जाता है। भगवान के वहां अनंत गुण है, और एक एक जो गुण है वो एक अपार है, ऐसे है और गिफ्ट है। भक्त भी इसी गुण करके संपन्न हो जाता है। वहाँ संसारिक जो सात्विक राशि कांसी गुण है इनका नाम निशान भी नहीं रहता, इनका वहाँ आतंक हार हो जाता है। तो माया का नाम निशान नहीं रहता, इस वास्ते कोई भी माया का उपद्रव तो वहाँ आई कर सकता है। इस प्रकार का जो भगवान का जो प्रत्यक्ष जो स्वरूप है उसके लिए भगवान का जो प्रेमी जो भक्त है सदन आकांक्षा करता रहता है, सदन उसके लिए लालायित रहता है, सदन उसके लिए आतुर रहता है। तो भगवान भी उसी प्रकार से उसके लिए रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम और मिलने की इच्छा बढ़ने से भगवान का साक्षात्कार दर्शन होता है। भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है, उसमें बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है और बहुत ही कुछ कोटि उसमें चमक है, गमक है। भगवान का स्वरूप बहुत ही कोमल है और रमणीय है, सबको आकर्षण करने वाला है और ज्ञान का पुंज है। जो नेत्रों से उसका दर्शन होता है तो नेत्र वहाँ एकदम रुक जाते हैं, देखते ही रहते हैं, वहाँ से आ नहीं सकते, उन्हें अपने की सहमत नहीं रहती। देखने से एक सुंदर की इतना आनंद होता है कि जिसको कोई बदला नहीं जा सकता। भगवान आनंद में है, उस आनंद का जो दर्शन है उस वक्त में क्या कहें, उसको रसा स्वाद कहें तो भी नहीं बनता, क्योंकि साधन अवस्था में रसा स्वाद लिया जाता है। ये तो एक प्रश्न से हर वक्त ही वो तो आनंद के में मग्न रहता है। रस में जो भगवान जो है उस रस का अनुभव हर वक्त ही होता रहता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता, विक्षेप नहीं होता, कमी नहीं आती। सदा एक तार को रस का अनुभव प्रत्यक्ष की भांति रहता है। जो निरातार सगुण निर्गुण सब एक ही चीज है, जैसे बादल और बूंदे और ओला बर्फ माने धातु से एक जड़ है, इसी प्रकार से ये धातु से एक सुंदर की रस नहीं है भगवान का स्वरूप आनंद नहीं है। इस आनंद में कोई कमी नहीं कहते हैं, तो भगवान के प्रभाव की बात बतलाई जाती है। यदि यदि विभूति मित्र कम श्री मधुर जी पूरे हुआ तब तक देगा वह कक्षम तो मन तेज अंश संभव। गीता की दसवें अध्याय के 41 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि यदि विभूति में सत्म संसार के में जो जो विभूति वाली चीज है और जो जो श्री युक्त यानी कांति युक्त और जो जो बल वाली चीज है, प्रभाव वाली चीज है, वो सब मेरा जो प्रभाव है तेज है उस का जो एक अंश का ही सब प्रादुर्भाव है, मेरे एक तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ संघ प्रकार भगवान कहते। भाग्य है कि तेजस्वी में जो तेज है, बुद्धिमान में जो बुद्धि है, ज्ञानियों में जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि मेरे संघ है। संसार के में जो भी कुछ विभूति वाली चीज है, ये भगवान ने अपनी विभूतियां जो बतलाई है, अपने जो प्रभाव की बात जो कही है, गीता की सातवीं अध्याय के मां, नवी अध्याय के मां, दसवीं अध्याय में भगवान कहते हैं वो तो मेरे से ही है। तो सारे दुनिया के विषय के बीच के मां जो कुछ ज्ञान है, तेज है, प्रभाव है, विभूतियां है, शक्तियां है, बल है, ये सब मिलकर के भगवान के प्रभाव के मुकाबले में एक अंश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी उत्पत्ति भगवान तेज के एक अंश प्रति ही इन सब की उत्पत्ति है। भगवान के स्वरूप की जो रचना है सब मिलकर के भगवान के
एक रस उनके एक अंश के समान ही ऐसे नहीं हो सकते। तो ये सब एक प्रकार से भगवान के तेज के एक अंश का प्रादुर्भाव हो, आभास मात्र हो। सूर्य में जो तेज है, तमिलनाडु के बीच में जो कांति है, अग्नि में जो तेज है, जो इन सब में जो प्रकाश है, भगवान कहते हैं कि वो मेरे एक तेज के अंश का ही प्रादुर्भाव है। इसी प्रकार से चीज संसार के बीच के मां जो ज्ञान है, शांति है, दया है, जितने प्रकार के गुण हैं और जितने प्रकार के तेज हैं या पर है, ये सब एक भगवान का जो प्रभाव है उसे के एक अंश का ही प्रादुर्भाव है। भगवान के प्रभाव को वाणी के द्वारा तो कहा नहीं जा सकता है, मन से उसका मन नहीं किया जा सकता है कि मन और वाणी से वो अतीत है। इसी प्रकार से की बुद्धि की भी सहमत नहीं है कि उसे को समझ सके, क्योंकि बुद्धि भी एक प्रकार से माया का कार्य होने से उजर रही है। परमात्मा का जो स्वरूप है, प्रभाव है, परमात्मा के जो गुण है, सब आप ही अपने आप को जानते ही। अच्छे गीता की 10वीं अध्याय के 15 के श्लोक में बताया कि स्वयं आप ही अपने आप को आप जानते हैं। और स्वयं भगवान ने भी कहा कि मैं सबको जानता हूँ, किंतु मुझको कोई भी उसे नहीं जान सकता। मैंने विद्यु समझना पर भावना हर्ष है, मेरा जो प्रभाव है उसको देवता गंध नहीं जानते और ऋषि लोग भी, तो मैं खुद ही अपने आप को जानता हूँ। जानने में आने वाला जो मेरा प्रभाव है, तो तुम मेरे प्रभाव के एक अंश का आभास मात्र है जो बुद्धि के जानने में आता है। जैसे चंद्रमा का जो प्रतिबिंब आने में स्थित है, उससे चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो स्वरूप है, दिन है, उसका एक अनुमान किया जाता है, क्योंकि ये तो मानवीय बात है। वहाँ तमिलना का उदाहरण नहीं ले सकता, तमिलना एक देश है, तमिलना अशुद्ध समुद्र की जड़ पदार्थ है, भगवान चेतन है और सब देश है और सारे देश इसके अंतर्गत है, वास्तव में देश पर है, क्योंकि प्रत्येक होने वाला जो सारा देश है, उसे सारे देश के बीच के में उनका जो प्रभाव प्रतीत होता है, वो भगवान के प्रभाव के एक अंश का आभास मात्र है, एक अंश का प्रतिबिंब मात्र है, एक अंश का ही चिंता मात्र है। ऐसा महान प्रभावशाली, प्रभाव की राशि, प्रभाव के पुण्य जो भगवान है, इसका कोई किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। जो कुछ संसार के में प्रभाव के नाम से प्रतीत होता है, शक्ति के नाम से प्रतीत होता है, बल के नाम से प्रतीत होता है, उस सब मिलकर के भगवान के प्रभाव का जो है, भगवान का जो प्रभाव है, उसका जो एक अंश, उसकी जो एक किरण या उसकी एक रश्मि, उस एक रश्मि का भी एक अंश का एक इनका मात्र प्रतिमा मात्र आवास मात्र है। सारी दुनिया में जैसे प्रगट बिजली का जो कार्य हो रहा है, कि बिजली से मशीना चलती है, पंखा चलता है, रोशनी होती है, माने सारी पृथ्वी के ऊपर सब देशों के बीच के में उस सब एक प्रकार से मिलाकर के विचार किया जाता है, तो बिजली जो एक धातु है उसका एक अंश मात्र है। यहाँ बिजली और बिजली की शक्ति और बिजली से होने वाले सब कार्य, इन सब की समान सत्ता है, किंतु यहाँ परमात्मा के विषय में परमात्मा जो है वो वास्तविक है, कि वास्तविक सत्ता है,
और संसार उसकी कल्पना है, इसलिए उनकी काल्पनिक सत्ता है। जैसे प्रतिबिंब जो होता है वो तो देखे आभास मात्र है, और बिंब जो है असली चीज है। चंद्रमा का जो स्वरूप है, बिंब है, वो तो असली है। उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है आईने में कई और जगह के वहां, वो उसका तिलका मात्र है। इसी प्रकार से संसार के बीच के माँ जो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला प्रतिबिंब है, वो प्रभाव के रूप में दिखता है। जैसे आईने के में चंद्रमा दिखता है, इसी प्रकार से थी जो भगवान की शुद्ध हुई समष्टि जो बुद्धि है, उस समष्टि बुद्धि के अंतर्गत ही ये सब प्रभाव दिख रहा है प्रतिबिंब की। जो इससे समझना चाहिए कि जिसके एक अंश का ये प्रभाव है, वो खुद खास कितना प्रभावशाली है, उसका कौन अंदाजा लगा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। भगवान कहते हैं कि अथवा बहु नित्यन किंग जाते हैं त्योहार जो है विश्व मिलन कृष्ण में काम से तो जग, अथवा हे अर्जुन तुम्हारे को भूत जाने से क्या प्रयोजन है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपने एक अंश कर करके धारण की व्यवस्थित हूँ। ये सारा का सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के एक अंश में परमात्मा ने अपने संकल्प के आधार धारण कर रखा है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सारा जगत, सारी संसार, संसार को, जगत को, ब्रह्मांड को एक ही बात है। जो परमात्मा जाता है, जो परमात्मा में मिलकर के एक ही भाव हो जाता है, वो तो परमात्मा ही बन जाता है। परमात्मा का जो प्रभाव है, उसका कोई प्रभाव अलग नहीं रहता। जब परमात्मा से अभिन्न हो जाता है तो उसका प्रभाव फिर अलग कोई चीज नहीं है। परमात्मा का प्रभाव इसका प्रभाव है, परमात्मा का स्वरूप इसका स्वरूप। और जो परमात्मा में नहीं मिल करके और परमात्मा से अलग रह करके परमात्मा का भक्त होकर के रहता है, उसका भी प्रभाव अलौकिक बताया जाता है। भगवान के परम धाम के बीच के माँ जो भगवान के में जो गुण और प्रभाव हैं, जो भगवान के नित्य धाम में जो भगवान के जो भक्त हैं, तो भगवान के जैसे उनका स्वरूप है, भगवान के जैसे उनका प्रभाव है, भगवान के जैसे उनके गुण हैं, सब बात एक सी रहती है। केवल एक सृष्टि रचना का जो काम है, सुख दुख उठाने का जो काम है, सृष्टि का शासन करने का जो काम है, ये स्वयं भगवान अपने हाथ में रखते हैं। और वे सब दुनिया की चिन्ह हो जाते हैं, भगवान के जैसे बन जाते हैं, भगवान की माफी से होकर के रहते हैं, भगवान के परम धाम। पर यहाँ उनका जो शरीर है वो हम लोगों की अपेक्षा एक शुद्ध है, निर्दोष है, और है वो पांच भूति की। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां पाप रहित है, इसलिए उनके भी दर्शन से, भाषण से, सफर से, वार्तालाप से लोगों को लाभ होता है। हम लोगों के मन एक प्रकार से उत्तम भाव आता है, अच्छे संस्कार जमते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम लोग पात्र बनते हैं। उनके गुण हमारे में कुछ आते हैं, और जो भगवान का भेजा हुआ पुरुष यहाँ आता है, जिसको हम अधिकारी पुरुष कहते हैं, भगवान स्वयं अपना अधिकार देकर जिसको भेजते हैं, उनकी और विशेष बात है। उनके तो दर्शन, भाषण, सप्रस, वार्तालाप, चिंतन इत्यादि से मनुष्य पवित्र होकर के परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंच जाता है। और जितनी अधिक श्रद्धा होती है, उतना उसमें अधिक प्रेम होता है, और श्रद्धा और प्रेम अधिक होने से उसको शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धा और प्रेम की जितनी बहुलता अधिक होती है, उतने ही शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके दर्शन होने से, वार्तालाप अधिक होने से भी महान लाभ होता है। उसमें भी श्रद्धा और प्रेम की प्रधानता है। श्रद्धा अधिक होने से प्रेम अधिक होता है, और श्रद्धा और प्रेम अधिक होने से परमात्मा की प्राप्त शीघ्र तो हो जाती है। भगवान विष्णु के स्वरूप की बात और उनके गुण और प्रभाव की बात, कुछ महात्मा के गुण प्रभाव की बात कही गई।
नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण अन्न 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 पूर्णानं पूर्णानं अपारानं शांतानं घनानं अचलानं ध्रुवानं नित्यानं भोगश्रुवं ज्ञानश्रुवं आनंदियां आनंदियां शांति शांति शांति।
विष्णु भगवान के ध्यान की बात तथा महात्माओं के प्रभाव के विषय में यह व्याख्यान श्री जय दयाल जी गोविंद का के द्वारा आज मिति पौषुदी 30 संवत 2011 प्रातः 7 बजे श्री राम विकदास जी परशुराम प्रजा की कोठी वृंदावन धमन रेती में दिया गया।